FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 39 29 71 04।
सामान ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है और हमने सुबह कहा था कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत होंगे जो कि पाकिस्तान की सियासत को बाकी लोगों से बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो दिफा के पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे। बहुत कम उम्र थी उनकी जब ये पार्लिमानी सेक्रेटरी बने, उसमें और भी वजारतें शामिल होती हैं लेकिन ये पार्लिमानी सेक्रेटरी की वजारत उनके पास थी। उनकी अप्रोच थी, पढ़े लिखे नौजवान भी थे, विजन भी था, अपने हिस्से का उन्होंने काम भी किया। आजकल वो बरतानिया हैं, किसी सिलसिला में आए हुए थे तो हमने कहा क्यों ना उनके टाइम से हम फ़ायदा उठाएं और उनसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद वो इन्वॉल्व भी रहे। वो भी तहसील गुजरखान से उनका ताल्लुक है। मेरी मुराद है चौधरी खुर्शीद जमान साहब। चौधरी साहब, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
राजा गफूर साहब, और आपका रेडियो हमेशा ही मेरे लिए बड़ा एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ शेयरिंग द व्यूज होता है अपने गुजर खान के लोगों के साथ या यूरोप में जो रहते हैं, और आपका शुक्रिया आपने वक्त दिया।
अच्छा साहब, आप एक अच्छी जगह रह रहे हैं, वेल एस्टेब्लिश हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, आपने मेहनत की। मैं चाहूँगा आप ज़रा अपना तफसीली तारफ़ कराएँ कि आपकी उम्र क्या थी जब आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बने। तो उस वक्त और भी वजारतें डेफिनेट होती होंगी, खाली पार्लिमानी सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, डेफिनेट और भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, अपना तफसीलन तारफ़ कराएँ आप।
जी, मैं गुजर खान से 97 में MNA बना, तो पाकिस्तान की 70 साल तारीख और आज की तारीख तक ये एक रिकॉर्ड है कि अल्लाह ताला ने मुझे MNA बनाया 25 साल एक माह और 19 दिन की उम्र में। तो फिर मैं चंद माह बाद ही मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त जो वजीर दफा थे वो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम जो थे उस वक्त वो खुद थे, तो उन्होंने मुझे मिनिस्टर इंचार्ज डिफेंस अफेयर्स बनाया, जो आज कल के दौर में मुशर्रफ साहब के दौर के बाद वो उस वक्त की मिनिस्ट्री डिफेंस जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम हुई। एक थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आज मिनिस्टर अलहदा है, और फिर एक मिनिस्ट्री डिफेंस प्रोडक्शन है और एक सिविल एविएशन है। तो आज तीन मिनिस्टर्स उस वजारत को लुक आफ्टर करते हैं जिस वक्त मैं था, और उस वक्त ये था कि तीन फेडरल सेक्रेटरीज जो थे वो थे इसी मिनिस्ट्री में, मैं मुझे ये मिला। दूसरा, मुझे ये भी एक अल्लाह ताला ने खास मौका अता फरमाया कि जब 97 में मैं बना तो उस वक्त फिर 28 मई का एटमी धमाके किए गए, फिर मिसाइलों के जो टेस्ट हुए जो लॉन्ग रेंज थे शॉर्ट रेंज थे वो हुए, फिर इंडिया और पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा कुर्बत और मामलात को ख़त्म, फिर कारगिल भी मेरी आंखों के सामने हुआ। तो फिर मेरी एक डिफेंस के हवाले से मेरी बहुत सारा फौज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रहा, तो आज तक भी फौज के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, मैं नफ्सियात समझ सकती हूँ और वो मुझे समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी इदारे के साथ छोटी उम्र में काम करते हैं तो आपके साथ ऐसे मामलात होते हैं जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं। फिर मेरा डॉक्टर AQ खान जो मोहसिन पाकिस्तान है उनके साथ एक खास तल्लक है, दोस्ती है, बुजुर्ग है मेरे, मुझे अपना छोटा भाई तसव्वुर करते हैं, तो वो एक वो डॉक्टर AQ खान का तारुफ मैं करवाना चाहूँगा आपको। आप सब लोग उनको एज ए मोहसिन पाकिस्तान, उन्हें आप इस हवाले से तो ज़रूर जानते हैं कि एटम बम के वो फादर ऑफ आर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन मैं उनको एक स्कॉलर, एक लेजेंड, जो मुसलमान हिस्ट्री में पिछले 500 सालों में कोई लेजेंड नहीं आया वो एक लेजेंड हैं, और खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तानी हैं, और हमारी मेरी उनके साथ गुजर खान के साथ एक ख़ास रिश्ता है, तल्लक है, दोस्ती का। तो इंशाल्लाह वो गुजर खान पहले भी आते रहे, मेरी ख्वाहिश है कि वो दोबारा आएँ और लोग मिलें, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्टर AQ खान डिफेंस डॉक्ट्रिन दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सारे मुसलमानों के पास एटॉमिक शील्ड होनी चाहिए वरना आपको खा जाएंगे, और वक्त ने साबित किया, लीबिया, इराक, सूडान, नाइजीरिया, इन ममालिक ने नहीं लिया, सीरिया ने, और आज उनका हाल आप देख लें। आज पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हम एटॉमिक पावर और एक मजबूत दफाई निज़ाम की वजह से हम बचे हुए हैं।
अच्छा साहब, अगर हम आपने कहा कि आप इन चीज़ों के साथ रहे तो हम आपसे ये फ़ायदा उठाते हैं कि या इस तरह की आज से कभी कोई ऐसा नौजवान या कोई ऐसा जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी या वज़ीर हमारे सामने नहीं आया जिनसे हम कारगिल की बात करें, या जब एटमी धमाका हुआ तो अगर उस वक्त आप पार्लिमानी सेक्रेटरी थे तो आप डेफिनेट बहुत करीब होंगे जब धमाका हुआ था, तो ये क्रेडिट आप किन को देते हैं?
देखें जी, मैं जब सियासत में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी तो मैं एटम बम के बारे में एक आपको मैं तारीख मस्क नहीं करना चाहता, मैं आपको फैक्ट्स रखता हूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो आप बात बड़े गौर से सुने, और अगर जो नहीं सुन रहे तो मेरी इन सुनने वालों से दरख्वास्त है कि वो लाजमी बताएं ये एक तारीख का हिस्सा है। एटम बम जिस वक्त इंडिया ने धमाका किया तो और उस वक्त सकूत ढाका हो चुका था, तो पाकिस्तानी कौम एक डिप्रेशन में थी। तो एक नौजवान जो जो पीएचडी के डबल फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे थे जर्मनी में, उन्होंने खत लिखा उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भट्टो साहब को, और डॉक्टर जो डॉक्टर ए क्यू खान ने जब ये खत लिखा तो खत लिखने के बाद उन पे अंधा एतमाद किया, ये भट्टो साहब का मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक उन्होंने उस इंसान पे किया जो कि नामवर कोई साइंसदान उस वक्त नहीं थे, एक नौजवान थे, ट्रस्ट किया, उन्हें सारे सहूलतें दी, लेकिन बदकिस्मती हुई कि उस वक्त माशाल्लाह लग गया तो ज़ियाउल हक़ साहब आ गए। अब मैं हवाला बात कर रहे हैं एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से, तो क्योंकि बुनियाद तो जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने रखी, तो हम एटमी कुवत जो है 1984 नवंबर में बन गए थे, कोल्ड टेस्ट जो है हमारा हो चुका था, और यूरेनियम बेस्ड एटम बम का नवंबर 1984 में, तो वो सारा दौर है ज़ियाउल हक़ का। ज़ियाउल हक़ के बारे में मेरे एज ए आमर कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे, लेकिन जब मुझे इन तारीख के इन हकीकतों से जब मुझे आगाही हुई तो मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि लोगों को नहीं पता असल पाकिस्तान का एटम बम जो है बनाने वाला वो है जनरल ज़ियाउल हक। नवंबर 84 में एटम बम बन गया था, लेकिन उसके बाद एक सफ़र होता है, फिर मिसाइल्स का काम शुरू होता है, एटम बम की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, उसमें हर बंदे ने उसको आगे प्रोग्राम को बढ़ाया और किया। फिर आता है मई 1998, और उस वक्त इंडिया ने धमाके किए, और पाकिस्तान उनका ख्याल था कि पाकिस्तान एटमी धमाके नहीं कर सकेगा, इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, छोटा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है, लेकिन उस वक्त एक मजबूत क़यादत थी मियां नवाज शरीफ की, और मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर 28 मई का प्रोग्राम, वो फिर हम पूरी एक लंबी तफसील है कि किस तरीके से तैयारी की जा रही थी किस तरीके से। तो ये जो हमारे दो चागी में जब दो टनल्स थे तो उस वक्त ये पुराने ही बने होते हैं, तैयारी होती है, लेकिन बाकी जितने भी लवाजमार से फिर फैसला हुआ कि 28 मई को करेंगे। लेकिन इंडिया के धमाका करने से और 28 मई के दिन के दरमियान एक जो दिन थे वो सालों से भी ज्यादा भारी थे, हर लम्हा जो था वो एक एक साल जितना लगता था, वक्त नहीं गुजर रहा था, प्रेशर था इंटरनेशनल रोकने के लिए और अवामी प्रेशर था करने के लिए, लेकिन उस वक्त दरकार थी हमें एक मजबूत सियासी लीडर की जो पब्लिक को अवाम की। आज शेख रशीद साहब बातें करते हैं जी मैंने और जफरुल हक साहब ने और गौर अयूब ने ये फैसला कराया, शेख रशीद ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ तारीख के साथ झूठ है और धोखा है। सब भी तकरीबन लोग मुत्तफिक थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और कर रहे थे, डिफेंस मीटिंग डिफेंस काउंसिल जो है उसमें तो ये शामिल ही नहीं थे, ये चंद एक लोग इनमें से जो आज बयान दे रहे हैं, राजा जफरुल हक साहब थे, गौर अयूब साहब थे, और सारे ही चाहते थे कि धमाका हो, निज़ामी साहब चाहते थे कि धमाका हो, अवाम सारी चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ए क्यू खान साहब ने उन्हें कहा कि आप लाजमी धमाका करें, मियाँ साहब का अपना सियासी फैसला था, और धमाका किया और पाकिस्तान छठी न्यूक्लियर पावर बनकर उभरा, और आज हमारी एक एक इंच जो है महफूज है, तो ये इस तरह है। तो माशाल्लाह जी पाकिस्तान का यूरेनियम बेस्ड एटम बम है, और उसके साथ ये है कि आज बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब की नालायकी और गैर मुहिबुल वतनी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस टेक्नोलॉजी को सिविल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं किया। ये एटम बम जो होता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ ये नहीं होती कि आप ये कोई एक बम है और ये आप अपने दुश्मन पे बरसाते हैं या मारते हैं। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो यूरोप में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इलाज किया जाता है कैंसर का। आपने देखा होगा कि बिजली पैदा की जाती है सस्ती। आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये जो कारें हाईटेक बनती हैं, ये जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो बम उस टेक्नोलॉजी का सिर्फ 10% है, 90% इसका इंडस्ट्रियल और दूसरे मस्बत जो है इसका यूज़ होता है। जी राय सर,
आपने जो है ये सारी चीज़ें करीब से देखी और ये हुआ, और आप सबको क्रेडिट दे रहे हैं कि जो लोग थे जो वैसे बेनिफिशरी बनना चाहते हैं, जो उस वक्त जो है वो भागकर जो है वो अपने गालबन बरतानिया आ गए थे या किसी और मुल्क
चले गए थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा जी मैं तो डर गया था कि पटाखा जो है गलत ना हो जाए तो मैं तो दुबई जा रहा।
नहीं, उन्होंने वैसे जाना था, चूंकि शेख हैं तो शेखों के पास ही जाना था।
काश वो ये जो शेख हैं, मैं समझता हूँ कि चलिए ये बात कहीं और निकल जाएगी। बहरहाल वो कहते होते हैं कि कुछ बातों पे पर्दा ही पड़ा रहना चाहिए। वहां से भाग के वापस आ गए, वहां पर सिर्फ वीजे के बगैर जा सकते थे, तो फटोफट चले गए थे। उस वक्त इनके पास वो ऑफिशियल पासपोर्ट था वफाकी वजीर होने के नाते,
चलें उन्होंने फ़ायदा उठाया अपनी वजारत का। तो थोड़ा सा अगर मैं कारगिल को भी टच कर लूँ, तो कारगिल पर भी इख्तलाफ रहता है कि इस तरह हुआ इस तरह हुआ। आवाम तो वही सुनती है जो सोशल मीडिया पे देखती है, अखबारात में देखती है, टीवी पर देखती है। तो ये कारगिल पर आप बात करें कि कारगिल क्या था।
कारगिल एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ कि हमारे पास आज वक्त कम हो जाएगा और मैं इस पर अलग आपके साथ प्रोग्राम करके और पैगाम लोगों को देना चाहूँगा। कारगिल क्या था और क्या नहीं था और कारगिल की वजूहात क्या थी, तो मैं राय साहब आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इस टॉपिक को हम एक अलग प्रोग्राम में डिस्कस कर लें।
चलें ठीक है, चलो सब आते हैं, आप जरा पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बरतानिया से पढ़ कर रहे, आप बरतानिया आते हैं कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। इमरान ख़ान साहब जो है वो अब 2.5 साल तक, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को हमसे बेहतर देखते हैं, करीब से देखते हैं, आपको कोई तब्दीली होते हुए नज़र आ रही है?
मैं सारी ज़िंदगी तकरीबन जो है नौजवानी के इंग्लैंड में ही गुजारे, मैं इंग्लैंड में ही पढ़ता रहा। नवंबर 96 में पाकिस्तान गया, MNA बना, फिर सियासी कैरियर शुरू हुआ। लेकिन मैं एक ब्रिटिश नेशनल हूं और मैं इंग्लैंड में पिछले 7-8 साल से रह रहा हूं, मेरे बच्चे यहां पे पढ़ते थे। तो मैं ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान में एक अलग सा मिशन लेके तो पाकिस्तानी सियासत में दोबारा एक्टिव हुआ। मेरे लिए ये MNA बनना और ना बनना, ये मेरे लिए माने नहीं रखता। मेरी जो इस दफ़ा का मिशन है वो है कि अवाम, हम पाकिस्तान को एक कौम बनाने का सफ़र शुरू करें कम अज़ कम। और मेरी जो बाउंड्रीज हैं या मेरी लिमिटेशंस हैं वो गुजर खान ही हैं। तो गुजर खान में अगर हम, मैं समझता हूँ कि हम तब्दीली शुरू करें तो हमारी आने वाली नस्लें भी गुजर खान के लोगों का उसमें एक आम रोल होगा आने वाले वक्त में कि हम करें। आप राय साहब यूरोप में रहते हैं, देखा है कि हम कौम नहीं बन सके। इमरान खान साहब की हुकूमत गवाए हुए 3 साल हो गए, 3 साल में उन्होंने किस जो भी उनका मैनिफेस्टो था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन उन्होंने सबका हुकूमतों को गाली गलौज, इल्ज़ाम तराशी की और इक्तदार हासिल किया। आज 3 साल हो गए, उन्होंने किसी किस्म का कोई भी आगे IMF और वर्ल्ड बैंक के से सर्टिफिकेट ले लेना कि मैंने पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक हो रही है और आगे बढ़ रही है, ये कोई माने नहीं रखता। इस वजह से कि आपने IMF वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, FBR का, ये सारा नादरा का रिकॉर्ड जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। पहली दफा तारीख में ये हुआ है कि पाकिस्तानी करेंसी को डायरेक्टली डॉलर के साथ आपने लिंक कर दिया है। डिवेल्युएशन पाकिस्तान रुपए की कागजों जैसी हैसियत जो है, ये इमरान खान साहब का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा है और आने वाली सदियां जो है पाकिस्तान ये भुगतेगा। अवाम जो है वो गहराई में नहीं जाती। अवाम आज भी ये देख रही है कि हमें गलियां नालियां बनने के लिए इन्होंने MPAs को और MNAs को ग्रांट्स दे दिए। हल्के में काम शाम शुरू हो गए और हल्के में काम जो होता है ये एक अलग सब्जेक्ट है कि कितना ग्रांट का हिस्सा जो है ऑन ग्राउंड लगता है, कितना पैसा रिश्वत और ठेकेदार और ब्यूरोक्रेसी के पार्टनरशिप से कितना पैसा ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा आज अवाम जो है वो परेशान हाल जो थी वो आज इस चीज़ में खुश है कि मेरी गली सीधी हो रही है और मेरी सड़क बन रही है, मेरे छोटे मोटे काम हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके जेब उनके बैंक में अगर जो लाख रुपया पड़ा हुआ था वो आज 60,000 रुपया है, वो 40,000 किधर गया है। ये एक इकोनॉमिक्स का वाइट कॉलर क्राइम है कि आपके डॉलर की आपके पैसे की डिवेल्युएशन इतनी कर दी जाती है कि आपको महसूस ही नहीं होता। ये इसी तरीके से ही है कि बाहर में बैठे हुए आपके अकाउंट में अगर 1 लाख डॉलर है तो वो 1 लाख डॉलर जो पहले 100 रुपए के हिसाब से था तो आज वो 1,70,000 बन गया, 60,000 बन गया। तो वो एकदम देखे 60% आपका उसमें मुनाफा आ गया, इसी तरीके से उधर से नुकसान आ गया। लिहाजा इमरान खान साहब की हुकूमत तारीखी तौर पर एक नाकाम हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि इनका एजेंडा ही नहीं था कि वो पाकिस्तान की कौम की रहनुमाई कर सकें। पाकिस्तान मैं उस वक्त से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है कलेक्टिव डिप्रेशन में ना चली जाए। धोखा इतना बड़ा हो गया है अवाम के साथ। अवाम ने वाकई राजा साहब इमरान खान को एक उम्मीद की किरण समझकर वोट दिया, नौजवानों ने उसकी जंग लड़ी सियासी और ऐवान इक्तदार में बैठे वाकई ही वोट लोगों ने वोट दिया है PTI को। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि हकीकतन इमरान खान जो है उसने मायूस किया है पाकिस्तान की। और ये आप बाद में जैसा मुशर्रफ का अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ के भी जो टीम थी वो उसके गीत गाती थी। आज पता चला कि मुशर्रफ पाकिस्तान के साथ क्या करके गया है और इमरान खान का भी आपको पता चलेगा कि उसने क्या तारीखी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान किया।
ये तो तारीख जो है वो साबित करेगी। जो सब आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने इन चीज़ों को देखा, लीडरों को देखा, अंदर के सिस्टम को देखा। हमारे हल्के से राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो पोठवार के जो हैं वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, ये जो सड़क बनवाई, चकवार रोड बनवाई, उसके बाद नादरा का दफ्तर, ये तो सब मतलब सरकारी काम होते हैं, वैसे भी होने चाहिए थे। गवर्नमेंट को ये हर आदमी को सहूलतें मिलनी चाहिए हर जगह। पासपोर्ट ऑफिस बनाया, यूनिवर्सिटी का काम ना हो सका, अस्पताल कोई नया नहीं बन सका, क्या वजह थी? उसके बाद राजा साहब क्लेम करते हैं कि हमने अरबों रुपये लगाए। उच्च साहब अरबों रुपये कहाँ लगे हैं?
राजा साहब वज़ीर आज़म जब भी कहीं से गुजर जाए ना तो हालात और वाकयात उस इलाके के और उस कौम के बदल जाते हैं। पाकिस्तानी कौम को गुजर खान के लोगों का बड़ा एजाज़ था कि उनके इलाके का एक वज़ीर आज़म बना और वो वज़ीर आज़म लोगों ने जिन्होंने वोटें नहीं भी दी थी उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दी इस उम्मीद से कि अब हमारे इलाके में तरक्की का एक नया सफ़र शुरू होगा, अब हमारी बेटियां जो हैं दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए नहीं जाएंगी बल्कि तहसील गुजर खान में ही रह के पढ़ेंगी। उनको यही लगा कि उनके बेटे जो हैं जो बच्चे हैं वो अब सस्ते दामों गुजर खान में यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और गुजर खान का कारोबारी तबका इस वजह से खुश हो गया कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे और इस इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, तो हमारे लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हमारी जायदादों की कीमतें बढ़ेंगी और हम लोगों में भी खुशहाली आएगी। लेकिन वहां पर खुशहाली सिर्फ और सिर्फ परवेज अशरफ साहब के घर में आई। उनका माजी, मैं इल्जामात की सियासत नहीं करता लेकिन निशानदेह, जब परवेज अशरफ साहब का माजी आप देख सकते हैं कि वो कोई अरबपति घराने में पैदा नहीं हुए, वो गुजर खान में ही एक बैंक में कैशियर की नौकरी करते रहे। उनका बड़की में एक कारखाना था, वो था। और आज उनके हालात वो देखें तो वो पता चलता है कि वो वाकई किसी रियासत के महाराजा हैं, ना कि वो एक जो उनका बैकग्राउंड है वो है। तो जो मैं समझता हूँ कि इतनी बेदयंती उन्होंने की, और मैं आपके सामने आज पहली दफा एक और बात करने लगा हूँ कि पहले तो उनको रेंटल कहा गया, मैं उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो जुल्म किया कि एनर्जी सेवर्स लिए, कि बिजली बड़ी महंगी थी, लोगों के बिल आते थे, तो एनर्जी सेवर्स अरबों रुपए के खरीद के पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को देने थे। आप यकीन माने कि अरबों रुपए के एनर्जी सेवर्स कागज में खरीदे गए, कागजों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, गुजर खान में भी एक एनर्जी सेवर किसी के घर नहीं गया। तो इस लेवल की करप्शन थी। वो गुजरहान में एक यूनिवर्सिटी का कैंपस ही बना देते, उन्होंने बिल्कुल कोई काम जो वजीर एक एम एन ए की हैसियत से तो शायद उन्होंने कर दिए, लेकिन एक वफाकी वजीर और प्राइम मिनिस्टर लेवल के काम को काम के नज़दीक भी नहीं गए, क्योंकि ना तो उनकी नीयत थी ना उनकी विजन थी कि वो कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि तहसील गुजरहान ने इस दफा उन्हें वोट देकर अपना वोट ज़ाया किया है, और यकीन करे से कह सकता हूँ कि अगली दफा ये गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि वो अब इस दफा उनका क्या रोल है, एक उन्होंने बुनियादी काम या असेंबली में कोई आवाज ही उठा दें, आज आवाज ये उठा दें कि पाकिस्तान का जो हमारा हमारा पास जो तेल के जखायर हैं, हमारे जो गैस के जखायर हैं, वो ही वो कुएं खोल दें, और पाकिस्तान में आज हम पाकिस्तान एनर्जी में खुद कफील होने के बावजूद भी हम वहाँ पर लोड शेडिंग है, गैस हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। राजा साहब ने आज तक ये तो नहीं की कि इंडिया में कश्मीर तो है ही है, वहाँ पर इंडिया में हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर लोग वहाँ पे प्लाजे बना रहे हैं, हमारी बच्ची जो है वो अगर हिंदू से शादी करेगी तो वो बिल्कुल ठीक है, मस्जिदों को गिरा के मंदिर बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में मंदिर के लिए स्पेशल ग्रांट्स दी जा रही हैं, और वहां पर हिंदुआना जो है बरे सगीर में 1100 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। राजा साहब ने कोई फॉरेन पॉलिसी बयान दिया हो, राजा साहब असेंबली में खड़े होते हैं तो उनका भाषण ये होता है कि हमें मिलजुल के चलना चाहिए, एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये कीचड़ और गंदगी है, इसे क्या सब होता है कि जी मैंने भी बड़े गलत काम किए हैं, आपने भी किए हैं, हम अपने एक दूसरे के गलतियों और गंदगी को छुपाएं, ना कि हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम सब गलतकार हैं। इस्लाम हमें इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है गलत को गलत कहो, चोर को चोर कहो, और जो अच्छा है उसको अच्छा कहो। तो मेरा तो यही पैगाम है तहसील गुजर खान वालों का कि सोच बदलाएंगे।
अगर देखें तो हल्के में आपके और हमारे हल्के में रहे, ज़िला नाजम रहे, जवाहिद इखलास साहब रहे, उसके बाद वो MNA भी बने, MPA भी बने, तो उनके टेन्योर को देखें तो कोई मेजर काम जो है वो हमें नज़र आता है, गली मल्ला सड़क छोटे मोटे काम हुए, नालियां बनी और उसके बाद मल्ले की गलियां बनी, कोई मेजर काम नहीं होगा, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई इस तरह का अस्पताल बना हो, वो भी क्लेम करते हैं कि हमने अरबों रुपये लगाए, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अरबों रुपए लगाए, राजा जावेद अखलास साहब ने अरबों रुपए लगाए, चैलेंज भी करते हैं। तो सर मेरा आपसे सवाल है, गुजर खान में अरबों रुपए कहाँ लगे ताकि हम उनको देखें?
साहब जावेद अखलास साहब के साथ हमने एक जमात में रह के इकट्ठे 7 इलेक्शन लड़े और उनको बड़े करीब से हम जानते हैं। वो एक उनके साथ गिला नहीं बनता, क्योंकि उनके उनके उनसे आप विजनरी बात की तो आप तो भी नहीं कर सकते। वो एक बल्दियाती 97 में बल्दियात के इलेक्शन से उठ के फिर एक MPA बने और फिर जिला नाजम भी बन गए, लेकिन उन्होंने गली नाली की सियासत की, थाना कचहरी की सियासत की। उन्होंने कोई खास तहसील गुजर खान के लिए ना तो प्रोग्राम था ना आज है। आज भी आप इंटरव्यू ले लें, जब उनसे बात करेंगे तो वो ये कहेंगे जी मैंने सड़कें बनाई हैं, मैंने गली बनाई है, मैंने मैंने जी ये किया है, बुनियादी जो बेसिक चीजें नहीं होती। MNA का काम होता है कि तुम आप अपने इलाके में बड़े प्रोजेक्ट्स लाएं, लोगों की रोजगार का बंदोबस्त करें, इंडस्ट्रियल कोई वहां पर एरियाज डेवलप करें, लोगों में कोई खुशहाली की एक उम्मीद आए, लोगों में करेक्टर बिल्डिंग करें। आप अगर अगर आप अगर चाहते हैं तो फिर आप कौमी सतह के फोरम जो हमारा नेशनल असेंबली है वहां पर बैठ कर खड़े होकर वो नुमाइंदगी अदा करें जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं। आप असेंबलियों में भी खड़े होकर इनकी एक भी तकरीर देखेंगे तो कोई भी बैन अल-क़वामी लेवल की, नेशनल लेवल की किसी इशू को इन्होंने डिस्कस किया हो। अभी अभी आप रखें, अभी बजट इजलास होने वाला है और बजट इजलास में आप देखिएगा कि परवेज अशरफ साहब की जो तकरीर होगी वो क्या होगी, किसी किस्म की विजनरी लीडरशिप आपको नजर नहीं आएगी। तो राजा जावेद इखलास साहब ने भी काम बेसिक हेल्थ यूनिट प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से हाई ये वाली चीज़ें तो उन्होंने कर दी, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से जब मैं MNA बना था तो 28 उस वक्त डिजिटल एक्सचेंज लगवाए थे, जो आज इंटरनेट और मोबाइल रेवोल्यूशन आया है, तो ये 28 ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। और फिर कोशिश की कि शराफत की सियासत को इंट्रोड्यूस किया जाए, गरीब इंसान को इज्जत दी जाए, थाने कचहरी की सियासत ना की जाए, तालीम लोगों के लिए, गुजर खान का जो लड़कियों का कॉलेज है वो हमारे दौर में हमने बनाया था, वहाँ गुजर खान शहर की गैस भी हमारे हमने लगवाई थी, सर्वर स्टेडियम हमने बनाया जहाँ पे सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ की बुनियाद है और आज भी लोग उधर जाते हैं, सवार मोहम्मद शहीद स्टेडियम में वो हमने बनाए, और इस मुतद्दद इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने की हैं।
जैसे सब आते हैं, आप नए दौर की तरफ आते हैं, आप जो तब्दीली की दौर की तरफ आते हैं, तो अब तब्दीली दौर के जो हैं वो MP हैं चौधरी जावेद कौसर साहब, कहते हैं कि बड़े शरीफ आदमी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, वो भी गली सड़क की तरफ कोशिश करते रहते हैं, क्या उन्होंने भी कोई मेजर प्रोजेक्ट बनाया या कि गली मोहल्ले की सियासत तक रहे?
जावेद कौसर साहब, हम सब लोग गुजर खान से हैं, एक दूसरे को इसी तरह ही जानते हैं जिस तरह एक घर के अफराद और ख़ानदान जानता है। जावेद कौसर साहब 3 साल दौर में तो कोई काम मुझे नज़र नहीं आया, आया हो कोई किया हो तो मुझे बताइएगा। अभी उनको ग्रांट्स मिली हैं क्योंकि अब हुकूमत जो है तरीके इंसाफ की, उन्होंने सोचा कि अपने MPAs और MNAs को ग्रांट्स दी जाए, तो उस हवाले से कुछ सड़कें और कुछ चीज़ें बनी हैं, लेकिन वो भी इंतहाई नाकाम रहे कि गुजर खान में किसी किस्म का बड़ा, 2 MPAs हैं मिल के चाहें तो वज़ीर आला से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। हमारे पास जमात इस्लामी के MNA होते थे राजा जहीर साहब, लेकिन नीचे 2 MPAs राजा जावेद इखलास साहब और रियाज साहब होते थे। तहसील गुजर खान की शक्ल राज साहब आपको याद होगी, काजियां से आगे सड़क नहीं थी, कोई हमारे पास प्राइमरी स्कूल होते थे, मिडल और हाई स्कूलों की बड़ी कमी थी, कोई अस्पताल नहीं था, तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी हम लोगों ने बनाए। तो कहने का मकसद यह है कि ये बहुत दोनों मिल के काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई खातर ख्वाह तब्दीली गुजर खान में आती नज़र नहीं आई।
चलिए साहब, आप जानते हैं कि गुलियाना रोड जो है वो शेर शाह सूरी के ज़माने की जो है वो बनी हुई है, सड़क बनी थी, और ये जंगी हालात होते थे तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती थी जो है वो, अगर GT रोड ना हो। राजा परवेज़ अशरफ साहब रहे, जावेद इखलास साहब रहे, ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार होती रही, यहाँ से गुज़रते भी रहे, हालाँकि ये सड़क जो है वो दो तरफ़ा होनी चाहिए थी, कारपेट रोड होनी चाहिए थी। अब जो है वो जावेद कौसर साहब ने जो है उसको रिपेयर कराने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं वो किस तरह की रिपेयर होगी, मेरी नज़रों से तो ये चीज़ अभी तस्वीर नहीं गुजरी, लेकिन सुना है कि वहाँ काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि उस सड़क को जो है वो जो मिलाती है कहाँ, मुझसे बेहतर आप रूट्स को जानते हैं, आप दफा के सेक्रेटरी रहे, आपको पता होगा उस सड़क की कितनी अहमियत है, इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते?
क्योंकि अब तजर्बा इतना हो गया है कि आम इसका सवाल का जवाब मैं ये दे सकता था कि जी रिपेयर करवा दी है या इसको डबल करवा देना चाहिए था, और वही पॉलिटिकल चीप स्कोरिंग कर लेता। वैसे मसला ये है कि ये जो पाकिस्तानी निज़ाम, हुकूमती निज़ाम में ये जो STO XCN महकमों के अफसरान और ठेकेदारान, ये एक माफिया है। जब तक कोई नेशनल असेंबली में और हमारी सूबाई असेंबलियों में वो लोग नहीं आएंगे जो ईमानदार हों, जो रिश्वत खाते तो नहीं है लेकिन खाने भी ना दें। अवामी अवामी पैसा अमानत जो है सही मानों में ऑन ग्राउंड इस्तेमाल हो तो वो एक तगड़ा और क्लीन आदमी कर सकता है। हम सब लोग इस ये हमारे जो लोग हैं ये मुलव्वस होते हैं, 70% ये पैसा ब्यूरोक्रेट्स, ठेकेदार और कुछ करप्ट पॉलिटिशियन के जेब में चला जाता है। ये ट्रायंगल जो है करप्शन का ये खत्म होना चाहिए। और ये कब खत्म होगा? जब कोई तजर्बेकार विजनरी दयानतदार ईमानदार सियासी क्यादत आगे आएगी, फिर ये सारी रोडें उस तरह बनेंगी जैसा शेरशाह सूरी ने बनाई थी और आज 500 साल बाद भी उन सड़कों के असरार जो मौजूद वो पूरे बरेसगीर में मौजूद हैं।
तो सब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। इलेक्शन इंशाल्लाह एक दिन तो होने ही होने हैं, 2 साल रह गए, अगला साल जो है वो इलेक्शन का शुरू हो जाएगा। लोग तो अभी भी बात कर रहे हैं तब्दीली की, इलेक्शन हो सकते हैं। अब एजिटेशन भी शुरू होने वाली है, पीडीएम ने जो है वो जलसे जुलूसों का अपनी डेट्स का भी ऐलान कर दिया है। तो जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं जिनके सर पर पार्टी चलती है, जो सारी सियासत उनके आगे पीछे घूमती है, वो अपने इलाज के सिलसिले में बरतानिया में मौजूद हैं। अब आस्ता आस्ता टिकटों की बुनियाद भी पड़ना शुरू हो जाएगी, किसको टिकट देना है किसको टिकट नहीं देना, होमवर्क जो है वो शुरू हो जाता है। तो सब डर लगता है कि टिकट फिर कहीं उन लोगों की तरफ ही ना चले जाएं कि जिन्होंने आगे इतना अरसा ये काम किया, तो जो विजनरी लोग हैं ये ना हो कि लाइन के पीछे चले जाएं।
देखें जी, मैं पहले भी और अभी भी ये एक बात करता हूँ कि मैं हम खानदानी मुस्लिम लीग ही हैं और हमने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। और ये जो नून है ये मैंने इस्लामाबाद अपने घर बनाई थी, उस वक्त ये मुस्लिम लीग थी। 12 अक्टूबर के बाद ये हम ख्याल बना रहे थे जो काफ बनी और हम लोग नवाज शरीफ लॉयलिस्ट ग्रुप बनाया जो बाद में मुस्लिम लीग एन बनी, नवाज बनी। तो हम बेगम कुलसूम का पहला जलसा गुजर खान में हमारे हुआ, लेकिन बदकिस्मती से जो नवाज शरीफ के सख्त खजैनी तौर पर हासदीन और मुखालफीन थे वो उनके आम तरीन प्लेयर का लबादा ओढ़ कर पार्टी पे उनका कब्जा रहा और उन्होंने असली नवाज शरीफ और मुस्लिम लीगियों को पार्टी से धक्के मार कर निकाला और मसनू मुस्लिम लीगियों को लाकर उनको टिकट दिए गए जो मुशर्रफ की कैबिनेट में बैठे थे या जिला नाजम थे। और इस दफा इंशाल्लाह ताला ये नहीं होगा, इस दफा मुस्लिम लीग के असल जो दावेदार हैं, असल मुस्लिम लीग हैं वो मैदान में हैं और हम इंशाल्लाह नाइंसाफी वर्कर के साथ मुस्लिम लीगियों के नहीं होने देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग की सीनियर क्यादत के साथ हम रबते में हैं और मेरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह टिकट देते वक्त वो ना सिर्फ नजरियाती मुस्लिम लीग की वर्कर और लोगों को सामने रखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि इसमें कितनी सलाहियत है कि वो अहम रोल अदा कर सके और टिकट इंशाल्लाह मिलेगा, कामयाबी भी होगी। मैं यहाँ पे एक बात करूँ, मैं बरतानवी शहरी हूँ और बरतानिया की शहरी हो या बरतानिया की शहरी या यूरोप की शहरियत लेने में लोग अरबों लाख मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के तो नेशनैलिटी लेने की कोशिश करते हैं। मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चे जो है वापस लेके जा रहा हूँ, नई रवायत डाल रहा हूँ। राय साहब वो रवायत ये है कि अगर हम अपने मुल्क अपनी मट्टी अपने निज़ाम के पे अगर हम यकीन नहीं करेंगे इज्जत नहीं देंगे तो बाहर से कोई नहीं कोई आएगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने पाकिस्तान को गाली देते हैं, उस पे एतमाद नहीं करते। ये हमारी माँ है, हमने मुझे नहीं पता कल मैंने मैंने बनना है या क्या बनना है, लेकिन ये रवायत जरूर रखूंगा कि गुजर खान पाकिस्तान में ये भी हो कि अपना पाकिस्तान का बेटा बरतानिया की शरीयत छोड़कर पाकिस्तान में सियासत करने के लिए जा रहा है और ये भी सोचे कि कल कामयाबी होती है या नहीं होती। मुझे अपने पाकिस्तान पे एतमाद होगा तो मुझे ये शर्मिंदगी यूरोप में रहते हुए होती थी कि चाइनीज हैं, टर्किश हैं, ये लोग तो बाहर लीडरशिप इनके एक इनका कमरा भी नहीं होता, ये बाहर आते ही नहीं है, अपने अपने मुल्कों में रहते हैं और देखें उनकी कौमें कहाँ पे चली गई हैं। हमें ये रवायत रखनी पड़ेगी, हमें इंतकामी सियासत से भी दूर होना पड़ेगा। जहां पर ये बात है कि पाकिस्तानी लोगों पाकिस्तान सियासतदान गलतियां करता है, वहां पर दूसरे जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासतदानों को भी नाजायज केसों में मुलव्वस करके इल्जामात की सियासत दे के अंदर कर देते हैं, ज्यादतियां करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए।
तो सब एमएनए की सीट बड़ी जिम्मेदारी की सीट होती है, कानून बनते हैं वो नेशनल असेंबली में बैठते हैं, लेकिन जो एमपीए होता है वो बहुत करीब होता है पब्लिक के, गांव के, इलाके के, अपने वार्ड के या अपना एरिया जो होता है। तो हमने देखा कि एक हमें वकील नज़र आते हैं, मेरी आए दिन तक उनसे बात तो नहीं हुई कि राजा हमीद साहब हैं या उनका पूरा नाम, मुझे पूरा नाम भी नहीं आता, लेकिन वो हमेशा मुस्लिम लीग को, ला फॉर्म को जो है वो लीड करते हैं, लेकिन टिकट के बारे में वो लाइन के पीछे खड़े होते हैं।
राजा मोहम्मद हमीद उनका नाम है, वो दौरताला मरकज से उस साइड से जाथरी में उनका गांव है, मुस्लिम लीग ही हैं, वकील हैं, वो डिप्टी अटारनी एडवोकेट जनरल भी रहे हैं पंजाब के, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमने, अब मैंने यही पूरी कोशिश की कि तहसील गुजर खान के जो मुस्लिम लीग ही हैं हम उनको इकट्ठा करें, हमने एक इकट्ठा, अल्लाह ताला खैर करे तो राजा मीर साहब, शौकत भट्टी साहब, हम लोग सब इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह टिकट वहाँ पर, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, टिकट भी मिलेगा उनको और हमें भी टिकट मिलेगा।
चल सब, आखिर में आप अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे?
मैं सिर्फ सिर्फ तहसील गुजर खान से एक बात का तकाजा करता हूँ कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान बनकर आप इस दफा वोट दें। आप इस दफा ना कोई फिरकावारियत, बरादरीज़म या वैसे ही तल्लकदारी, कोई जाती नफरत, नाती मोहब्बत गिरनी, पाकिस्तान और इस्लाम की मोहब्बत में वोट दे। अगर मैं पाकिस्तानी और इस्लाम की नुमाइंदगी आपके सामने बेहतर करने की अगर मैं समझता हूँ, सलाहियत रखता हूँ, तो मुझे वोट दें। अगर नहीं समझते तो बेशक ना दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर मौका दिया, तहसील गुजर खान को ये कभी भी गिला नहीं होगा कि उनका नुमाइंदा नालायक था, करप्ट था, झूठा था और उसने सही नुमाइंदगी का जो फर्ज बनता था उसके वो हक अदा नहीं किया।
चलिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी दूर से कीमती टाइम, मुझे आपकी मसरूफियात का भी अंदाज़ा है और आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
इंशाल्लाह, सो नाइस ऑफ यू।
सामान ये थे चौधरी खुर्शीद जमान, जो कि बरतानिया की फ़िज़ाओं से हमारे साथ थे। हमने बहुत सारे उनसे सवालात किए, उन्होंने जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें जो तारीखी हवाले से थे, चूँकि वो हवाला जात भी थे, उन्होंने उस तरह भी उसकी निशानदेही की, चूँकि वो ख़ुद पार्लिमानी जो हैं वो सेक्रेटरी रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को उनको देखा, एटम के हवाले से जब तजर्बात हुए तो उस टीम का भी हिस्सा थे, तो हमने ज़्यादा कुरेदने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि वो पाक आर्मी के और इनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें भी उनका ख्याल रखना पड़ता है।
FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 3929 7104। नियत खाव नियत छू इन हल्फियास नल्फिया।